विचार चल रहा है पंचदशी ग्रंथ में अष्टम प्रकरण कुटस्थदि प्रकरण है। इसमें कुटस्थ ब्रह्म और चिदाभास दोनों का निरूपण किया जा रहा है। कुटस्थ ब्रह्म त्वम पद का लक्षार्थ है और चिदाभास चेतन त्वम पद का वाच्यार्थ है। तो कुटस्थ ब्रह्म ही अपना स्वरूप है ऐसा निश्चय पहले करना चाहिए, तब फिर यह ब्रह्म के साथ एकत्व होगा। और दोनों का विषय भी भिन्न भिन्न है। चिदाभास चेतन का विषय घट है, इसलिए अयम घट ये घड़ा है। अंतकरण में घटाकार वृत्ति हुई, चक्षु इंद्रिय के कारण, इसलिए चक्षु इंद्रिय को लेकर के अंतकरण की वृत्ति अंदर है, बाहर तो है नहीं। अंतकरण की वृत्ति चक्षु के बिना बाहर नहीं जा सकती है, इसलिए घट देश पर्यंत घटाकार वृत्ति गई, घट देश में गई। और घट मलिन होने के कारण घट में चेतन का प्रतिबिंब नहीं हो सकता है, इसलिए घट का स्फुरण नहीं हो सकता है। तो वृत्ति जब घट देश में गई तो वृत्ति का संबंध हुआ घट के साथ, तो वृत्ति स्वच्छ होने के कारण वृत्ति में चिदाभास हो जाएगा। चिदाभास हुए बिना वृत्ति नहीं रह सकती है, चिदाभास तो अवश्य होगी। जल रख दिया तो जल में सूर्य का प्रतिबिंब अवश्य होगा, ठीक इसी प्रकार घटाकार वृत्ति हुई तो घटाकार वृत्ति में चिदाभास हुआ, समझ में ना। इसलिए चिदाभास कहाँ पर हुआ, वृत्ति में हुआ है ना। इसलिए कौन सी वृत्ति में, घटाकार वृत्ति में, इसलिए चिदाभास जो है घट को स्फुरण किया, इसलिए चिदाभास का विषय हो गया घट। लेकिन ध्यान में रखो तो जहां पर चिदाभास है वहां पर कुटस्थ भी है कि नहीं, है ना। कुटस्थ तो व्यापक है, परिचिन्न तो है नहीं, ध्यान में रखना। जहां पर चिदाभास है वहां पर कुटस्थ भी है। चिदाभास वृत्ति में है और उसी वृत्ति में कुटस्थ भी, समझ में ना, ध्यान में रखना। इसलिए क्या कहा, द्वासुपन्ना सहिया सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, है कि नहीं। तयोर अन्य पिपलम साध्य बुद्धि अन्यो अस्नन अभिचा कसित, ये कहा कि नहीं, अन्यो अनस्नन अभिचा कसित। एक तो भी मीठे मीठे फल को खाता है तो कौन खाया, चिदाभास, हाँ जीव, वही चिदाभास हुआ, जीव तो चिदाभास है ना। इसलिए खाया वो मतलब भोक्ता हो गया, अंतकरण में तादात्म्य किया तो भोक्ता हो गया और क्या, भोक्तृत्व आ गया। तो जहां पर जीव है चिदाभास उसी में कुटस्थ भी है कि नहीं, वहां पर कुटस्थ भी हो साक्षी, इसलिए साक्षी का तादात्म्य नहीं होगा, साक्षी का तादात्म्य अंतकरण के साथ नहीं होगा। तो अंतकरण में तादात्म्य होने पर जीव हो गया, वो हो गया भोक्ता, घट को जाना, हाँ वो जीव हो गया घट को जाना। लेकिन उसमें कुटस्थ भी है, उसी अंतकरण में अथवा अंतकरण की वृत्ति में कुटस्थ भी, वो प्रकाशित करता है घट ज्ञान को, है ना। त्रिपुटी को समझ लो, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये 14वां श्लोक में बताया, धी विद्याभास कुंभानाम समूह भाष्यते चिदा, चित कहने से कुटस्थ ब्रह्म, कुटस्थ ब्रह्म के द्वारा तीनों का समूह, धीवृत्ति कहने से कौन हुआ, धीवृत्ति कहने से ज्ञान, ज्ञान हुआ, और आभास कहने से कौन, चिदाभास है ना। तो प्रमाता हो गया ज्ञाता समझ लो, और ज्ञेय हो गया कुंभ, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, तीनों का समूह प्रकाशित हो जाएंगे कुटस्थ ब्रह्म से, जन्मे ना। इस प्रकार प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये भी कहा जाता है, ध्याता ध्यान ध्येय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ऐसा समझ लो। लेकिन आभास के द्वारा चिराभास के द्वारा केवल घट का ही हुआ, कुंभ मात्र फलत्वास एक आभास तस्पुरित, ये 14वां श्लोक में आया है ना। आभास जो चिराभास है ना जीव, उसे केवल कुंभ का ही ज्ञान हुआ, क्योंकि कुंभ देश में चिदाभास भी है ना, वो फल चेतन हो गए, वो जो फल चेतन चिदाभास हुआ उसी से केवल घट का ही स्फुरण होगा, घट का ही स्फुरण होगा। इसलिए दोनों का विषय अलग अलग हो गया। आगे देखो 15वां श्लोक में टीका में लिखते हैं, कुंभस्य चिदाभास ब्रह्मो उभय भाष्यत्वे लिंगम आह। कुंभ हो गया घड़ा, वो घड़े में दोनों है, घड़े में दोनों है, चिदाभास भी है और ब्रह्म कुटस्थ भी है, चिदाभास भी है कुटस्थ भी। चिदाभास क्या है? परिच्छिन्न। कुटस्थ क्या है? अपरिच्छिन्न व्यापक। इसलिए यहाँ पर भी कुटस्थ है, घट देश में भी कुटस्थ है, दोनों में कुटस्थ रहेगा, धन में ना। लेकिन चिदाभास वो परिच्छिन्न है, तो वहां पर कैसे गया? वृत्ति से गया। वृत्ति हो तो चिदाभास भी होगा, धन में ना। तो देखो ये बोलते हैं, चिदाभास ब्रह्म उभय भाष्यत्व, दोनों से ये प्रकाशित होता है कुंभ है ना, चिदाभास से ही प्रकाशित होता है और कुटस्थ से ही प्रकाशित होता है। इसमें लिंगम, लिंग वाला ज्ञापक, लिंग का अर्थ ज्ञापक, ज्ञान के जनक को कहते हैं लिंग, ज्ञान का जनक को कहते हैं लिंग, समझ में ना। हाँ, जैसे धूम को कहते हैं लिंग, धूम को कहते हैं लिंग, किसका लिंग हुआ? अग्नि का लिंग नहीं, अग्नि ज्ञान का लिंग, धन में ना। ये सब अग्नि ज्ञान का जनक हुआ ना धूम, अग्नि ज्ञान का जनक धूम है कि नहीं? हाँ, लेकिन धूम का ज्ञान होकर के धूम होता है जनक, धूम हो मान लो है ना, धूम हो लेकिन आपको धूम का ज्ञान ना हो तो बन्नी का ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा, ऐसे में कि नहीं भाई। धूम हो महानस में पाकशाला में, लेकिन आपको धूम का ज्ञान नहीं है तो बन्नी का ज्ञान हो जाएगा? नहीं। तो धूम को जहां पर लिंग कहते हैं, हेतु कहते हैं, धूम का ज्ञान को लेकर के बोलते हैं, धूम का ज्ञान हो तो बन्नी का ज्ञान होगा, केवल धूम मात्र से बन्नी का ज्ञान नहीं हो सकता, समझ में ना। तो ले लीजिए, इसलिए कुंभ जो घट है दोनों से प्रकाशित होता है, चिदाभास से भी होता है, कुटस्थ ब्रह्म चेतन से भी होता है। इसमें क्या ज्ञापक है, क्या हेतु है, ये बता रहे 15वें श्लोक में देख लीजिए। चैतन्यम द्विगुणम कुंभे, चैतन्यम द्विगुणम कुंभे, ज्ञातत्वेन स्फुरत्यतः, ज्ञातत्वेन स्फुरत्यतः अन्येनो व्यवसायाख्य, अन्येनो व्यवसायाख्य माहुरे तद्यथोदितम्, माहुरे तद्यथोदितम्। स्फुरति अतः ऐसा विच्छेद है, स्फुरति आगे यतः, इसको कहते हैं यण संधि, इको यणचि है ना। जैसे सुधि उपास्य, शुद्धि उपास्य होता है, ठीक इसी प्रकार स्फुरति धन अतः, ती के इकार को यह हो गया, अतमल इसलिए, इसलिए किसलिए क्योंकि ब्रह्मा कूटस्थ चेतन से भी प्रकाशित होता है घट, और चिदाभास से भी प्रकाशित होता है घट। इसलिए क्या हो गया, कुंभे चैतन्यम द्विगुणम, कुंभे चैतन्यम द्विगुणम, दो चेतन हो गए ना घट में। हाँ, दो चेतन घट में हो गए। जैसे पहले बताया था दीवार का दृष्टांत बताते हैं, दीवार दीवार है ना, तो दीवार में क्या है, पहले तो सामान्य सूर्य का प्रकाश है ही, हो गया ना, और दीवार के सामने आपने रख दिया शीशा, कांच रख दिया, तो कांच में जो प्रतिफलन प्रकाश हुआ ना, वो प्रतिफलन प्रकाश का संबंध हो गया दीवार के साथ। ये दीवार में दो प्रकाश हो गए ना, सामान्य प्रकाश भी हो गया और विशिष्ट प्रकाश भी हो गया। ये दीवार जो चमकती है, दीवार तब चमकी जब दोनों चेतन, ये दोनों प्रकाश का संबंध हो गया, हो गया कि नहीं, ये दीवार चमक जाती है। ठीक इसी प्रकार घट है विशिष्ट रूप से भान हुआ, पहले तो चिदाभास का संबंध हुआ, भाग नहीं घट के साथ चिदाभास का संबंध, और कूटस्थ चेतन तो है ही वहां पर, तो चिदाभास का संबंध कैसे हुआ, वृत्ति गई घट देश में, इसलिए वृत्ति में चिदाभास भी हुआ, इसलिए चिदाभास का भी संबंध घट के साथ हो गया, और कूटस्थ चेतन तो है ही। जैसे कांच का प्रकाश जाने से पहले क्या है, सूर्य का प्रकाश दृष्टांत में सामान्य प्रकाश हो गया, हो गया कि नहीं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर तो चिदाभास उत्पन्न होने से पहले घट कैसा था, घट का भान हो रहा था नहीं हो रहा था, अज्ञात रूप से हो रहा है। हाँ भाई, ऐसा समझ रहा है ना, जैसे कांच के प्रकाश जाने से पहले दीवार दिख रही थी कि नहीं दिख रही थी, दिख रही थी ना, हाँ सामान्य प्रकाश से, और प्रतिबिंब छोड़ दिया आपने तो चमक गया दीवार, हुए ना। ठीक इसी बार यहाँ पर समझना है, चिदाभास उत्पन्न होने से पहले मतलब घटाकार वृत्ति होने से पहले घट का ज्ञान हो रहा था, अज्ञात रूप से हो रहा ना, है ना। अब घटाकार वृत्ति गई वहां पर, तो घटाकार वृत्ति घट में गई चक्षु से, तो घटाकार वृत्ति गई तो उसमें चिदाभास नहीं, चिदाभास पहले समझो, घटाकार वृत्ति हुई तो चिदाभास उसमें प्रतिबिंब हुआ, हो गया कि नहीं, तो चिदाभास प्रतिबिंब हुआ तो प्रतिबिंब कहां से आया, कहां से आया, अरे भाई किसका प्रतिबिंब पड़ा, कूटस्थ ब्रह्म है ना, वो कूटस्थ ब्रह्म कहाँ है, इधर है कि उधर है, हाँ ऐसे समझ लो। हाँ दृष्टांत में तो भाई सूर्य तो आकाश में है, दीवार तो नीचे है, दीवार तो और दर्पण भी नीचे है, सूर्य तो वहां बाहर है दूर में है, ऐसा यहाँ पर नहीं समझना है, कहीं ब्रह्म वैकुंठ में होगा तो उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं समझना है, घट में है ना। तो जिस घट में घटाकार वृत्ति हुई, घटाकार वृत्ति अंदर हुई, लेकिन चक्षु के द्वारा जब घटाकार वृत्ति घट में गई ना, घटाकार वृत्ति में प्रतिबिंब हुआ, और वो जो बिंब कहाँ पर है, कहीं दूर में नहीं समझना है ना, उसी घट में, उसी घट में ब्रह्म भी है कूटस्थ भी, पहले बाहर का चल रहा है ना विचार, ये शरीर का विचार नहीं चल रहा, अब शरीर का विचार करेंगे, अब घट का विचार कर रहे है ना। तो उसी घट में जब घटाकार वृत्ति हुई है ना, उसमें घटाकार वृत्ति में प्रतिबिंब पड़ा जिसको आप चिदाभास बोलते हो है ना, तो वहां पर बिंब कौन है, क्या बाहर है क्या, वहीं पर बिंब है, ऐसा समझना है ना। हाँ ऐसा समझ कर रखिएगा, इसलिए जहां पर जीव है वहां पर साक्षी भी है, जिसके अंतकरण में हम मैं करके जा समझ रहे ना, है ना, उसी में वो कूटस्थ ब्रह्म साक्षी भी है। हाँ हाँ वो कह रहा हूँ, बिंब कोई बाहर नहीं है कह रहा हूँ मैं, उसी में ही बिंब है। इसलिए दृष्टांत दृष्टांत पूरी समानता नहीं होती है, वो तो समझाने के लिए बोल दिया जाता है, समझाने के लिए। और ये भी समझाते हैं आपको कि बिंब बिंब बोल दिया जाता है, लेकिन बिंब प्रतिबिंब कुछ होता नहीं है, समझ में ना, बिंब प्रतिबिंब कुछ वास्तविक, ये तो समझाने के लिए बोल दिया। जैसे आप स्वप्न में जाते हो, स्वप्न में आप जाते हो, स्वप्न में दिखता है, स्वप्न में दिखता है ना, चित्र दिखता है कि नहीं, जो भी सब चित्र हो गया, चित्र हो गया तो कहां पर दिख रहा है, किस दर्पण में दिख रहा है? अरे मन तो चित्र हो गया ना भाई, आप नहीं समझो, जो भी सब चित्र हो गए कि नहीं हो गए, तो वहां पर पर्दा कौन है, पर्दा कौन है? अरे पर्दा तो आत्मा ही है ना। अरे हाँ, कुटस्थ को आत्मा बोलो, जो बोलिए, नाम जो बोलना है बोलिए, लेकिन पर्दा तो वही है, अधिष्ठान ही है वो पर्दा है कि नहीं। और चित्र हो गए सब, प्रतिबिंब हो गए, तो बिंब कौन है? वो तो पर्दा बन गया ना, वो तो पर्दा बन गया भाई, और पर्दा ही चित्र बन गया ना। अरे भाई पर्दा ही तो चित्र बन गया ना, उसका बिंब कौन है ढूंढो, उसका बिंब कौन है ढूंढो। बड़ा कठिन है कि नहीं? देखो इधर भाई, देखो मुख चाहिए ना, बाहर में, बाहर में मुख चाहिए, ये गले पर मुख है, और सामने दर्पण है, मान लो दीवार पर दर्पण है ना, तो ये इस मुख का प्रतिमा पड़ रहा है दर्पण में, आए समझ में ना। तो दर्पण में प्रतिबिंब के लिए है ना, को अनात्मा दर्पण हो गया, वो दर्पण कैसा है? तो अनात्मा दर्पण में प्रतिबिंब पड़ने के लिए क्या चाहिए? बिंब चाहिए, बात समझ में आई है? इसलिए अनात्मा दर्पण में प्रतिबिंब के लिए क्या चाहिए? बिंब चाहिए। लेकिन आत्मा दर्पण में ऐसा नहीं होता है, पहले समझ लो, समझ करके बोलना फिर। तो आत्मरूपी चित दर्पण में प्रतिबिंब के लिए बिंब की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये दोनों में अंतर है। अनात्मा दर्पण में प्रतिबिंब के लिए बिंब चाहिए, बिंब के बिना वहां पर प्रतिबिंब नहीं होता है। लेकिन जब आत्मा जब दर्पण बन जाता है, वहां पर प्रतिबिंब के लिए बिंब की जरूरत नहीं पड़ती वहां पर। अरे भाई वही 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 पर्दा है और वही चित्र है, वही पर्दा है वही चित्र है, इसलिए यहां पर बिंब को ढूंढने गए तो कहां मिलेगा, कहां मिलेगा बोलो भाई? भले आप जागृत में देखे हो, भले आप जागृत में देखे हो, तो वही व्यक्ति दिखता है क्या सपनों में? वही दिखता है? नहीं दिखता है। जो भी दिखाई दे रहा वो प्रतिबिंब हो गया, तो उसका बिंब कहाँ है? नहीं ना है, इसलिए इसलिए अनात्मा चित दर्पण में प्रतिबिंब के लिए बिंब की आवश्यकता नहीं होती है, भासता है, इतना समझ लो, भासता है। अरे भाई अनात्मा ही दर्पण हो गया, बाहर में जब देख रहे हो ना, इसको कहेंगे अनात्मा दर्पण। लेकिन आत्मा जब दर्पण बनता है, वहां पर प्रतिबिंब के लिए बिंब की जरूरत नहीं पड़ती, भासता है बस। इसलिए अगर संसार है, ये जो भास रहा है, संसार हो गया चित्र, प्रतिबिंब हो गया, तो कहां पर भास रहा है सब? तो आत्मा दर्पण हो गया, आत्मा दर्पण हो गया ना भाई। अरे भाई प्रतिबिंब दिखता है दर्पण में, इसी प्रकार चित्र हो गया, क्या हो गया? प्रतिबिंब। इस संसार जो दिखे जा रहा है ना, ये क्या है? प्रतिबिंब हुआ कि नहीं? ये दर्पण के बिना दिखे नहीं देगा, दर्पण तो परमात्मा हो गया है कि नहीं? तो बिंब कौन है संसार का फिर? वो तो पर्दा बन चुका है। दोनों एक ही है, आप समझ में कि नहीं है? इतना दृष्टांत और दृष्टांत में फर्क को समझ कर रखिए, ये मेरे कहने का मतलब। दृष्टांत देते हैं ना दर्पण का, है ना, तो उससे बिल्कुल अलग है। कुल इतना बोला गया कि दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, है ना। ये जरूर नहीं कि बिंब के बिना प्रतिबिंब नहीं होता, ये जरूर नहीं है। बिंब हो तब जाकर के प्रतिबिंब दिखेगा, ये कोई जरूरी नहीं होती। तो बिना बिंब से भी दर्पण, बिना बिंब से भी प्रतिबिंब होता है, जैसे स्वप्न का बताया आप लोग। अरे भाई दर्पण तो सत्य होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? जब इधर आप विचार करोगे हाँ, दर्पण तो क्या होना चाहिए? वो तुम्हारा अंतकण ही मिथ्या है, तो वो कैसे दर्पण बनेगा, है कि नहीं? ये तो समझाने के लिए बोल देते कि अंतकण प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन अंतकण भी तो प्रतिबिंब है, मतलब चित्र है। ये तो समझाने के लिए बोल दिया कि अंतकरण में ब्रह्म का प्रतिमा पड़ जाए, ये तो समझाने के लिए बोल दिया। नहीं सुनो तो मेरी बात को, ये तो समझाने के लिए बोलते हैं कि ये जीव है और ईश्वर, इतना समझाने के लिए बोल देते हैं। वाच्यार्थ तम पद का वाच्यार्थ तत्पद का वाच्यार्थ के लिए बोल देते हैं आप। तत्का सुनो, तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर हो गया और तम पद का वाच्यार्थ जीव हो गया। तो ये वाचार्थ को समझाने के लिए बोल देते हैं कि वो बिंब हो गया ईश्वर वाचार्थ और जीव हो गया क्या, प्रतिबिंब हो गया। हाँ, उसके लिए एक दर्पण होना चाहिए, तो दर्पण कौन है? आप अंतकण बोलोगे कि नहीं? लेकिन अंतकण भी तो मिथ्या है ना, क्या है? तो अंतकण मिथ्या है तो वो भी तो प्रतिबिंब हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर उसका दर्पण कौन होगा? फिर अंतकण रूपी प्रतिबिंब का दर्पण कौन होगा? आत्मा ही होगा कि नहीं होगा, है ना? तो आत्मा यदि आपका दर्पण हो गया, सारा संसार क्या हो गया? तो प्रतिबिंब में अंतकण भी हुआ कि नहीं हुआ? अरे अंतकण भी तो भास्रण है भैया, कोई सत्य तो है ही नहीं। तो अंतकण भी आपका क्या हो गया? सारा संसार को ले लीजिए, सारा संसार को आप प्रतिबिंब ले लो, चित्र की तरह ले लो, और तुम्हारा आत्मा तो दर्पण बन गया, और वो ये संसार रूपी प्रतिबिंब का बिंब कहाँ है? कहाँ बिंब है? नहीं, बिना बिंब है। बिंब की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो आपको बता रहा हूं भैया, ये दृष्टांत दृष्टांत में फर्क को समझ कर रखिएगा, है ना? तो ये फर्क समझ कर रखिएगा कि अनात्मा दर्पण में प्रतिबिंब के लिए बिंब चाहिए, इतना समझ कर रखिएगा। लेकिन जब आत्मरूपी जब दर्पण की बात कहते हैं, वहां पर ऐसा नहीं बनेगा। तो आत्मरूपी दर्पण प्रतिबिंब के लिए बिंब की कोई जरूरत, मेरा भास रहा इतना समझ लो। यही आपका मांडू के उपनिषद कहेगी और आपका जो है योग वशिष्ठ जी यही बताएंगे। ये समझ के रखिएगा भाई, आत्मरूपी दर्पण में प्रतिबिंब के लिए बिंब की आवश्यकता नहीं है, समझ में ना? जैसे स्वप्नों का प्रतिबिंब, ये समझ को। अरे भाई वो तो दर्पण बन गया आत्मा, आत्मा तो स्वयं दर्पण बन गया कि नहीं बन गया? और सारा संसार तो आपका प्रतिबिंब हो गया कि नहीं? और तीसरा कोई पदार्थ तो है ही नहीं, तीसरा कहाँ पदार्थ है? हाँ, तीसरा तो कोई है ही नहीं, और फिर बिंब कहाँ है फिर? आप समझ में कि नहीं? ये समझ लो, मतलब कि आत्मा ही दर्पण हो जाता है और आत्मा ही प्रतिबिंब हो जाती है, सर्वम खलोदम ब्रह्म, बस ये सिद्ध हो जाता है। ब्रह्म से अतिरिक्त तो ना कोई दर्पण है, दर्पण से अतिरिक्त तो ना कोई प्रतिबिंब होता है। एक जीव बात की अलग है। अच्छा चलो, ये जो है दृष्टांत दृष्टांत में समझ करके रखिएगा। इसलिए जब वहां तक हमारी बुद्धि नहीं पहुंच रही है तो मान लो भाई जीव क्या है? प्रतिबिंब, बस पहली अवस्था मानना पड़ता है ना। अरे बालक को समझाते हो कैसे गणित? मान लो भाई तुम्हारे पास जो है चार ठो कलम है और भैया को दो ठो दे दिया, तो कितना रहा? वास्तविक दो ठो है उसमें? बोलो है क्या दो ठो? लेकिन मानना पड़ता है बालक, और बालक बोलेगा मेरे पास तो एको कलम नहीं है, चारों कलम कहां से आया? तो उसको गणित समझ में नहीं आएगा, फिर बात पकड़ में नहीं गिरी। इसी प्रकार प्रेम मान लो कि जीव क्या है, प्रतिबिंब है, बस पहली अवस्था में मान लो ऐसा ऐसा जो है ये होता है। और कैसे होगा कैसे नहीं, तो ऐसा तर्क करने से नहीं होगा, पहले मानोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा बाद में चलो आइए। तो ये हो गया, देखो 15वां श्लोक में कर रहे हैं कि चैतन्यम द्विगुणम कुंभे ज्ञातत्वेन स्फुरति अतः। तो भाई कुंभों में घट में दो चेतन हो गए, तो ये हम कहने वाले थे ना, जहां पर चिदावास होता है वहीं पर कूटस्थ ब्रह्म भी होता है, और चिदावास कूटस्थ ब्रह्म को छोड़कर नहीं रह सकता है कि नहीं, इसलिए जीव जो है साक्षी को छोड़कर के नहीं रह सकता है। ठीक, इसी प्रकार घट देश में जब चिदावास हुआ वहीं पर कूटस्थ ब्रह्म है, अन्यत्र होगा ऐसा नहीं समझना है। तो दो चेतन का संबंध हो गया, तब कैसा भान होता है, विशिष्ट भान होगा, इसलिए हाँ, घटो ज्ञात, घट को मैंने जाना, घट का ज्ञान मुझे हुआ, ये कह रहे ज्ञातत्व न स्फुरति, ज्ञात रूप से भासेगा, मतलब घट का ज्ञान हुआ, घट का ज्ञान मुझे हुआ ऐसा। तो इसलिए दो चेतन हो गए है ना। तो केवल हम वेदांती लोग मानते हैं ऐसी बात नहीं, तो नैयायिक लोग भी कुछ लोग मानते हैं, ये कह रहे हैं। देखो अन्य अनुव्यवसायाख्यम आहुर एतद यथा उदितम, ये देखो जीवी करेगा ना, है ना, जीवी करेगा, जिज्ञासा जो है जो अपने आप को अजी है, प्रेरणा तो आत्मा से होगी, बात सही है ना, साक्षी से प्रेरणा होगी है ना, लेकिन जो जिज्ञासा कौन करेगा, जिज्ञासा जीव करेगा। भाई अपने आप को हम अज्ञानी समझेंगे तब तो आप जिज्ञासा करेंगे ना, है ना, जानने की इच्छा ना हुई, जानने की इच्छा का नाम क्या है, जिज्ञासा। तो जानने की इच्छा कौन करेगा, जो अपने आप को अज्ञानी समझता हो, जीव तो होगा ना, ये जीव करेगा, ये जिज्ञासा जीव करेगा, ऐसा समझ लो। अच्छा, तो अन्य अनुव्यवसायाख्यम, अन्य मतलब तार्किक लोग, इसको क्या बोलते हैं, अनुव्यवसाय ज्ञान बोलते हैं भैया, कूटस्थ चैतन्य जो है ना उसको अनुव्यवसाय ज्ञान बोलते हैं। पहले घड़ा है, पहले समझ लो भैया शब्द को, ये घड़ा है, पहले चिदावास से हुआ कि नहीं, घट का निश्चय हुआ, मतलब केवल घट का स्फुरण, केवल घट का स्फुरण घड़ा है, इतना हुआ, किसको ज्ञान हुआ, ये चिदावास को, नहीं चिदावास को हुआ, चिदावास को हुआ, समझ में ना। हा, तो उसके बाद वो लोग बोलते हैं है ना, उसके बाद निश्चय ज्ञान को बोलेंगे व्यवसाय, व्यवसाय का अर्थ निश्चय ज्ञान, घड़ा है ऐसा निश्चय ज्ञान हुआ, उसके बाद एक ज्ञान होता है उसको बोलते अनुव्यवसाय, कैसा ज्ञान होगा, घट ज्ञान मुझे हुआ, घट ज्ञान मुझे हुआ, घटो ज्ञात घटम अहम ज्ञानमि है ना, मया घटो ज्ञात, इसको वो लोग अनुव्यवसाय, व्यवसाय निश्चय, उसके पश्चात व्यवसायात पश्चात ज्ञानम, वो अनुव्यवसाय हो गया, ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं, वो तार्किक लोग ऐसा बोलते हैं, और हम लोग उसको क्या बोलेंगे, साक्षी ज्ञान बोलेंगे, कूटस्थ बोलेंगे, और हमारे वेदांत में एक ही साथ होगा है ना, जब जीव जानेगा किसको, घड़े को जानेगा, तो साक्षी को अज्ञात होगा, वो साक्षी जानेगा कि नहीं, जानेगा ना तो मान लो कि हमने झूठ बोल दिया, अनुभव में घटा, हमने झूठ बोल दिया, किसने बोल दिया, जीव ने बोल दिया, तो ईश्वर को ज्ञात होगा कि नहीं होगा, ज्ञात हुआ कि नहीं हुआ, समय लगेगा, एक क्षण का गैप होगा, नहीं होगा, तो एक ही उसी समय होगा ज्ञान, हाँ, एक पल भी इधर उधर नहीं होगा, ऐसे में ठीक इसी प्रकार यहाँ पर समझ लो, जिसमें घट का भान हुआ ये घड़ा है करके, तब उसी समय ही ज्ञान मुझे हुआ कि नहीं हुआ ऐसा संशय होता है क्या? नहीं होता है। हाँ, इसलिए घट ज्ञान का स्फुरण भी उसी समय हो जाएगा, ये वेदांत का कहना है। लेकिन तार्किक लोग बोलते नहीं उसके बाद होगा, उसको इसलिए अनुव्यवसाय बोलते हैं। चलो, अन्य अनुव्यवसायाख्यम आहुर एतत्, इस साक्षी ज्ञान को वो लोग क्या बोलेंगे? अनुव्यवसाय बोलते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे? साक्षी ज्ञान बोलेंगे। ठीक है, थोड़ी सी देख लो भाई। अतो घटस्य ब्रह्म चिदाभास उभय भाष्यत्वा, घट जो है ना दोनों चेतन से भाषा, ब्रह्म चेतन से भाषा और चिदाभास से भाषा। इसलिए कुंभ में दो चेतन का संबंध हुआ, ज्ञातत्वेन द्विगुणम चैतन्यम व्याति, है ना? इसलिए दो चेतन हो गए, दो चेतन, जो चेतन से ये घट कैसा भास रहा है, ज्ञात रूप से घट मुझे मालूम पड़ा, घट का ज्ञान मुझे हुआ, ऐसा। अच्छा, आगे इदम एव घट ज्ञातता अभासकम चैतन्यम तार्किकैर नामांतरण व्यवह्रियते इति आह, है ना? ये अभासक चेतन, ज्ञात घट का अभासक चेतन, जाना हुआ घट का ज्ञान, ज्ञान जाना हुआ घट का ज्ञान कैसे हुआ? कुटस्थ से हुआ, धन में ना, ये कह रहे हैं। देखो, घट ज्ञातता अभाषकम, घट में जो ज्ञातता धर्म आया, किसने ज्ञातता को उत्पन्न किया? चिदाभास ने, है ना? तो चिदाभास में, चिदाभास ने घट में ज्ञातता को उत्पन्न हुआ, मतलब घट का स्फुरण हुआ, स्फुरण हुआ जो घट है उसका अभाषक, उसका प्रकाशक कौन होगा? कुटस्थ हो, लेकिन वो भूल जाता है, लेकिन जीव, हाँ जीव भूल जाता है कि कुटस्थ से प्रकाशित हुआ, गड़बड़ी इसी में है, समझ में कि नहीं? ऐसा है, इतना जान लिया तो विवेक हो गया, लेकिन जानता नहीं है, है ना? ऐसा है। तो चैतन्यम तार्किक, तार्किक लोग उसको दूसरा नाम दे दिया, अनुव्यवसाय बोल दिया भाई। हम जिसको साक्षी ज्ञान बोलेगा ना, वो लोग क्या बोलेंगे? वो लोग अनुव्यवसाय ज्ञान बोलेंगे, नामांतरण हो गया दूसरा नाम, तो दूसरा नाम से व्यवहार करते हैं, बोलते हैं कि ये अनुव्यवसाय ज्ञान। इसलिए श्लोक में बताया अन्य अनुव्यवसायाख्यम, आख्य मतलब नाम, आख्य का अर्थ नाम, है ना? यथोदितम, श्लोक में आया यथोदितम, उसका अर्थ बोलते हैं, मतलब यथोक्तम, पहले जो मैंने बताया कुटस्थ ज्ञान, है ना, एतदेव ब्रह्म चैतन्यम, ये जो ब्रह्म चैतन्य है साक्षी ज्ञान, उसको अन्य तार्किका, अन्य शब्द से किसको लेंगे? तार्किक, तार्किक है ना, न्यायिक हो, वैशेषिक हो, वो लोग। अनुव्यवसायाख्यम ज्ञानांतरम, ये अनुव्यवसाय जो ज्ञान हुआ ना, वो दूसरा ज्ञान हो गया, किससे? पहला ज्ञान से दूसरा ज्ञान हुआ, पहले व्यवसाय ज्ञान हुआ घड़ा है, उसके बाद दूसरा ज्ञान क्या हुआ? घट ज्ञान मुझे हुआ, दूसरा ज्ञान हुआ। प्राहु ऐसा बोलते हैं, इति योजना, ऐसा श्लोकों का अन्न कलरो, है ना? अच्छा, और उसको जो है ना स्वयं प्रकाश मानते हैं, जैसे हम इसको स्वयं प्रकाश मानेंगे, किसको? कुटस्थ चेतन को, है ना? कुटस्थ चेतन को हम स्वयं प्रकाश मानेंगे, क्योंकि घट का स्फुरण हुआ चिदाभास से हुआ कि नहीं, घट भाषा मतलब, तो घट जो भाषा इसका भी भान आपको हुआ कि नहीं? ध्यान दे रहे हैं, हाँ। वो किससे भाषा? कुटस्थ चेतन से, लेकिन कुटस्थ चेतन किससे भाषेगा? उसको यदि और किसी से प्रकाशित मानेंगे तो क्या होगा? अनवस्था, इसको बोलते हैं अनवस्था दोष, आया समझ में ना? तो अनवस्था दोष हो जाएगा ना, है ना, इसलिए संप्रकाश हो गया। उसका भान के लिए और किसी भान की जरूरत नहीं। तमेय भान्तम अनुभाति सर्व, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। सर्वम कहने से कौन हो गए? अरे तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तमेव भान्तम, वो जब संप्रकाश है, कौन है? कुटस्थ चेतन। कुटस्थ चेतन संप्रकाश है, इसलिए सर्वम कहने से कौन? ज्ञाता ज्ञान गय, सब प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसा ही मैं ना, ऐसा है। तो इसी बात को आगे बोलते हैं, इसलिए दो चेतन को मानना होगा, क्योंकि व्यवहार हुआ ना, दोनों प्रकार का व्यवहार हो रहा है। पहले व्यवहार हो रहा है घड़ा है, उसके बाद व्यवहार हो रहा है कि घट ज्ञान मुझे हुआ। ये जब बोलते हो, बोलना भी एक व्यवहार हुआ ना, तो व्यवहार अलग अलग तब होगा जब कारण अलग अलग हो, तो है ना, ये बोल रहे। टीका में देख लो, थोड़ा सुधारना है। टीका में देखिए, अयम घटो ज्ञातो घटः, ऐसा लिखा है सभी में? नहीं लिखा होगा। हाँ देखो क्या सुधारना है, मैं बोलता हूँ, आप लोग सुधारिएगा। अयम घटो, घट को घटो लिखो, सुधार दीजिए भैया। घटो लिख दिया, उसके बाद लिखिए ज्ञातो घट, ऐसा ज्ञातो घट, इति से पहले, इति से पहले सुधार लो, ज्ञातो घट, ऐसा लिखिए, है ना। तो कैसा होगा, मैं बोल रहा हूं फिर, अयम घटो, उसके बाद ज्ञातो घट इति व्यवहार भेदात अपि, है ना, चिदाभास ब्रह्मणोर भेदो अवगंतव्यः इति आह बोलते हैं। पहला व्यवहार हुआ अयम घटः, ये घड़ा है, है ना, ऐसा व्यवहार हुआ, और उसके बाद कैसा व्यवहार हो रहा है? ज्ञातो घटः, घट का ज्ञान मुझे हुआ, घट का ज्ञान मुझे हुआ, मेरे से घट ज्ञात हुआ, है ना। दो व्यवहार अलग अलग हुए ना भैया, ये कैसा व्यवहार? बोलना, इसको कहते हैं अभिवदन। व्यवहार भी चार प्रकार के, व्यवहारस चतुर्विधः, व्यवहारस चतुर्विधः, व्यवहार चार प्रकार के, अभिज्ञा अभिवदन हानो उपादान अर्थ क्रिया कारी, चार व्यवहार हो गए। अभिज्ञा एक हो गया, हाँ, दूसरा है अभिवदन, तीसरा क्या है? हानोपादान, हानोपादान, चौथा है अर्थ क्रियाकारी, अर्थ क्रियाकारी। हाँ, पहले समझ लो चार को। अभिज्ञा ना जानना, अभिज्ञा क्या है? जानना, ये हो गया। उसके बाद बोलना अभिवदन, बोलना, है ना, और तीसरा क्या? हान उपादान, छोड़ना और ग्रहण करना, और क्या, छोड़ दो नहीं तो लो, और चौथा क्या? अर्थ क्रियाकारी, जैसे घड़े में जल भरो, है ना, जल भरो ठंडा रखने के लिए, है ना, ये क्या है? अर्थ क्रियाकारी, है ना, ये सब खाना पीना सब आगे अर्थ क्रियाकारी में, ये जितने भी संसार में व्यवहार है ना, ये चारों में ही आ जाएंगे, सब आ जाएंगे ना। चारों में आगे सब, इसलिए ये व्यवहार हुआ बोलना, देखो अयम घट, ये बोलना, ये व्यवहार हुआ। फिर उसके बाद बोलते हो घट का ज्ञान मुझे हुआ, ये भी तो बोल रहे ना, दोनों व्यवहार अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? है बोल रहे हो, लेकिन एक में तो ये घड़ा है बोलते हो, और दूसरे में बोलते हो नहीं घट का ज्ञान मुझे हुआ, है ना, तो अंतर हुआ शब्द में। ये कह रहे व्यवहार भेदात, व्यवहार में भेद होने के कारण भी दो चेतन को अलग अलग मानना चाहिए। ये करे देखो, चिदाभास ब्रह्मणोर भेदः, चिदाभास चेतन अलग है, कुटस्थ ब्रह्म चेतन अलग है, ऐसा अवगंतव्यः मतलब जानना चाहिए, अवगंत मतलब जानना चाहिए, निश्चय करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए, निश्चय करना पड़ता है ना, निश्चय करना पड़ता है परोक्ष ज्ञान मात्र से काम नहीं चल रहे, केवल मानने मात्र से काम नहीं चलेगा ना। माना हुआ अलग चीज होती है और उसको निश्चय करना अलग चीज होती है। केवल मानने मात्र से नहीं हुआ, उसको तो निश्चय करना पड़ेगा कि नहीं। तो मानी हुई चीज कभी कभी निकल जाती है कि नहीं। है कि नहीं भई, आप नाटक में पाठ कर रहे हो है ना, तब राजा बन गए हो तो मान लिया कि नहीं राजा है ना। कभी कभी भूल भी जाता है कि नहीं। अरे पुरुष है, स्त्री का पाठ करता है मान लो, उनको बताना पड़ता है देखो भूलना नहीं है, सभी में स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है। है कि नहीं। तो मानी हुई चीज हुई ना, ये रानी जब बन गया है वो तो मानी हुई चीज हुई, इसलिए कभी कभी भूल जाएगा, वो कट जाएगी ना। लेकिन मैं पुरुष हूं ये मानी हुई चीज नहीं है, ये अनुभूति हुई कि नहीं। जो चीज अनुभूति से होती है ना, वो कभी घटने वाली नहीं है। कैसे होतेगी फिर, अपनी अनुभूति को आप कैसे हटा दोगे, है कि नहीं। ऐसा ये तो अविद्या अवस्था में बात बोल दिया, ये अविद्या अवस्था की बात बोल दिया। तो अविद्या अवस्था में हमको कैसी अनुभूति है कि हम तो पुरुष है ना, हम तो क्या है, स्त्री है, देवदत्त है, ब्राह्मण है। ये तो अविद्या अवस्था भले ही हो, ये तो दृष्टांत हो गया, ये तो दृष्टांत हो गया, हो गया कि नहीं। ठीक इसी प्रकार विद्या अवस्था में यदि ऐसी अनुभूति हो, हम तो ब्राह्मण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम तो वही है बस, ये अनुभूति हुई। देखो ऐसी अनुभूति जब हो जाएगी ना, कल मानने से नहीं, मानी चीज तो जो भाई स्त्रीलिंग से पुलिंग हो जाएगा, पुलिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन अनुभूति चीज कभी हटने वाली नहीं है, इसलिए अनुभूति होनी चाहिए। इसलिए तो बोल रहे हैं अवगंतव्य, मेरा स्वरूप तो कूटस्थ ही है, ऐसा जानना चाहिए। चीदावास नहीं इति आह। 16 नंबर श्लोक में देखो, घटो यमित्यसावुक्ति राभासस्य प्रसादतः, राभासस्य प्रसादतः विज्ञातो घट इत्युक्तेर, विज्ञातो घट इत्युक्तेर ब्रह्मानुग्रहतो भवेत्, ब्रह्मानुग्रहतो भवेत्। देखो दोनों का व्यवहार अलग अलग हो रहा है और दोनों का हेतु भी अलग अलग है। ये बोलते हैं देखो, अयम घटः ये घड़ा है इति असौ उक्ति, ये जो उक्ति है कथन, ये घड़ा है जो बोलते हो ना, ये जो कथन हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, ये किसकी कृपा से, किसके कारण, कह दिया आभासस्य प्रसादतः, आभास के कारण, प्रसाद कृपा, आभास के कारण आप ऐसा व्यवहार करते हो। ज्ञान के बिना तो व्यवहार नहीं करोगे ना, है ना। इन चिदाभास से घट का स्फुरण हुआ है, इसलिए आप बोलते हो कि ये क्या है, ये घड़ा है, ये हो गया। लेकिन घट का ज्ञान तुम्हें हुआ, हाँ घट का ज्ञान मुझे हुआ, ये जो भान हो रहा है ये किससे हो रहा है, कुटस्थ से, ब्रह्म कहो, कुटस्थ कहो, साक्षी कहो, एक ही बात है, उससे हो रहा है, ये चिदाभास से नहीं हो रहा है, चिदाभास से नहीं हो रहा है, कुटस्थ चेतन से हो रहा है। लेकिन अंतकरण में तादात्म्य करके ये बोल रहा है, ये बोलने वाला कौन है, बोलने वाला कुटस्थ है कि चिदाभास है। अरे भाई ये जो बोलता है ना घट का ज्ञान मुझे हुआ, ये कौन बोल रहा है, कुटस्थ बोल रहा है, नहीं चिदाभास बोल रहा है। लेकिन भान किससे हुआ, देखो इसलिए दोनों का स्वरूप एक है कि अलग है, अरे दोनों का स्वरूप एक ही है। एक यदि ना होता, आप सुनो ना, मूल स्वरूप को लेना है ना, चिदाभास का स्वरूप यदि मूल ना होता ना, बोले भिन्न यदि होता अलग, हाँ तो वे कूटस्थ ने अनुभव किया, चिदाभास क्यों बोलेगा, कि घट का ज्ञान मुझे हुआ, तो इसमें बुद्धि अटक जाती है। यहां पर बुद्धि काम नहीं कर रही, ये तो आपको कह रहा हूं मैं, है ना। जिसने प्रकाशित किया किसको, घट ज्ञान को, मतलब हम लोग कुटस्थ है, जिसने कुट ये घट ज्ञान को प्रकाशित किया, वो यदि अपना स्वरूप से भिन्न होता फिर बोलने वाला कैसे बोलेगा कि घट ज्ञान मुझे हुआ। बोल रहा है कौन, चिदाबाद बोल रहा है कि नहीं, लेकिन भान हुआ है किससे, तो भान होने वाला जिसको, मतलब जिसको भान हुआ वो यदि अलग होता फिर बोलने वाला दूसरा कैसे होगा, बात बढ़ में कि नहीं। लेकिन जिससे बोल रहा है उसमें भूल जाते कि मैंने ही इसको प्रकाशित किया था। क्यों भूल गया, भाई अंतकरण में तादात्म्य करके बोल रहा है कि घट का ज्ञान मुझे हुआ है कि नहीं समझ में। अंतकरण में अथवा अहंकारा वृत्ति में जो मैं बोल रहा है ना, कि अहंकारा वृत्ति में तादात्म्य करके अपने को जीव समझ रहा है, तो अपने को जीव समझ रहा है तो उसको मूल को भूल गया, वो गड़बड़ी इसमें हो जाती है। यही तो पकड़ना, यही तो विवेक बोल रहे हैं यहां पर, विवेक ऐसा ही करना है। इसलिए मानने से विवेक नहीं होगा ना हाँ, उसको पकड़ने से ही, निश्चय करने से ही विवेक होगा, नहीं तो इतना तो सब समझ लोगे भैया कि तम पद का वाचार्थ क्या है, चिदावास है, और तम पद का लक्षार्थ क्या है, आप तो रट लिया एक दिन में हो गया। तो ये बात यहाँ पर नहीं कह रहे है ना, कल बताएंगे। तो ये ओम पूर्णमदः पूर्णमेदः पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति।